بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، دیکھو بات چل رہی تھی محبت الہی، تعلق مع اللہ پر، کہ دیکھو ہمارے جو اعضا ہے وہ کام کر رہے ہیں اور یہی اعضا سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو انسان اپنے اعضا سے، باڈی پارٹ سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. تو اللہ تعالی سے محبت اور تعلق بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کائنات کی جو چیز تمہیں اچھی نظر آئے، جس سے تمہیں راحت پہنچے، جس سے تمہیں لطف حاصل ہو، اس کے بارے میں سوچا کرو، یہ چیز کہاں سے آئی، کس نے یہ چیز بنائی، اور کس نے یہ چیز مجھے دی، کہاں سے آئی، کس نے بنائی اور کس نے دی. جتنا سوچو گے اتنا ہی اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ ہوگا. اس لیے کہ صورت میں، کائنات کی ہر شے میں تمہیں اللہ جل شانہ کا جلوہ نظر آئے گا. جلوے پر بات دکھائی دی تھی، میں نے بتائی تھی. ہاں، پھر گوشت پر بات ہوئی تھی، فرمایا دیکھو کھانا سامنے آیا. تو کھانا پکانے والا تو باورچی ہے، لیکن آخر اس کو سمجھ کس نے دی، اس کو عقل کس نے دی، اس میں گوشت کہاں سے آیا، یہ گوشت کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا. تو اس پر بات ہو چکی تھی. اب ترکاریاں اور پھل کہاں سے آئے؟ دوسری طرف نباتات. ایک طرف جانور تھے، پھر جانور کو اللہ نے حلال بنایا، بعض جانور کو اللہ نے حرام بنا دیا، پھر جانور کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. کتنے جانوروں کی نسلوں کی نسلیں ہم کھا گئے، لیکن کبھی بھی انہوں نے انکار نہیں کیا. یہ ساری باتیں تھی. اب ترکاریاں اور پھل کہاں سے آئے؟ دوسری طرف نباتات اور ترکاریوں کو دیکھو، تم نے زیادہ سے زیادہ یہ کام کیا کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے زمین میں بیج ڈالا، لیکن کیا تمہارے اندر اس کی طاقت تھی کہ بیج کو کومپل بنا دو، یعنی وہ جو اگتا ہے نا اس کو کومپل، اور پھر اس کو اس کومپل سے پودا بناؤ. کومپل کہتے ہیں جو دانا پھٹ کر جو اوپر نکلتا ہے، سب سے پہلے ابتدا اس کو کومپل کہتے ہیں. زمین میں دانا ڈالا لیکن اندر پھٹا، اور پھٹ کر جو اوپر ظاہر ہوتا ہے ایک پتا دو پتا، اس کو کوپل کہتے ہیں. تو فرمایا اس چھوٹے سے بیج سے کوپل پھوٹتی ہے. وہ کوپل اتنی نازک اور کمزور ہوتی ہے کہ اگر ایک بچہ بھی اس کو انگلی لگا دے تو وہ کوپل ختم ہو جائے، لیکن وہ نازک کوپل اتنی سخت زمین کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکل رہی ہے. ہے تو کمزور، اب زمین کے اندر دانا ڈالا ہے اور اس زمین کو پھاڑ کر باہر نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ اپنی قدرت کاملہ سے اس کوپل سے زمین کا پیٹ چاک کرا رہا ہے، یہ اللہ ہی کرا رہا ہے. پھر وہ کوپل پودا بن رہی ہے، کوپل پھر پودا بن رہی ہے، پھر اس پودے پر کائنات کی ساری طاقتیں نچھاور ہو رہی ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوائیں چل رہی ہے، اس کے اوپر سورج اپنی کرنیں نچھاور کر رہا ہے، یعنی دے رہا ہے، چاند اس کے اوپر اپنی روشنی ڈال رہا ہے، اور اس کے ذریعے اس کی نشو نما ہو رہی ہے. سبحان اللہ. پھر اس پودے پر ترکاریاں اور پھر پھل آتے ہیں، پھر ان کو کاٹ کے بازار لایا جاتا ہے، پھر بازار سے پھر وہ تم تک پہنچتے ہیں. لہذا کھانے کا ایک نوالا، ایک لقمہ، کھانے کا ایک لقمہ، ایک نوالا جو تم کھا رہے ہو، اس نوالے کو تمہارے حلق تک پہنچانے کے لیے اس کائنات کی ساری طاقتیں گردش کر رہی تھی، خدمت میں تھی. اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح اس انسان کی اللہ کے ہاں کیا عزت ہے کہ ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں، اس ایک ایک لقمے کے پیچھے پوری دنیا کی کتنی طاقتیں لگ رہی ہیں. سورج کی طاقت لگی، چاند کی لگی، ہوا کی لگی، आसमानों की लगी, रात और दिन की लगी, और उसके अलावा हिफाजत हुई, और फरिश्तों की लगी, वो सारी की सारी चीजें हिफाजत करके वो लुक्मा हमारे मुंह में आता है। इस नवाले को तुम्हारे हलक तक पहुंचाने के लिए कायनात की सारी ताकतें गर्दिश कर रही, घूम रही है। इसी बात को मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबरू बादुमा व खुर्शीद व फलक दरकार नन, अबरू बादो माह व खुर्शीद व फलक दरकार नन, तातु नाने बकफ आरी व बगफलत बखूरी। यानी रोटी का टुकड़ा जो तुम खा रहे हो, अगर गौर करोगे तो ये नजर आएगा कि इसमें बादल हवा, अबरू बादल बाद हवा, चांद खुर्शीद फलक, यानी चांद सूरज सारी कायनात की ताकतें सर्फ हुई है। तो फलक दरकार नंद, तब जाकर ये लुकमा तुम्हारे हाथ में पहुंचा है, बकफ आरी तेरे हाथ में पहुंचा है। जब खाना सामने आया तो तुमने कहा कि ये अच्छा बावर्ची है। तुमने कहा क्या कि ये अच्छा बावर्ची है, उसने बड़ा अच्छा खाना पकाया है, उसको खाना पकाने का बड़ा अच्छा ढंग आता है, हम ही कहते हैं ना। लेकिन जरा ये सोचो कि बावर्ची खाना पकाने का वो ढंग माँ के पेट से लेकर आया था नहीं, उस बावर्ची को ये ढंग किसने सिखाया? अब ये बताओ, ये किसने सिखाया? एक ही चीज है, क्या हो? घूम कर वहीं आएंगे। वो एक मलिक में एक तरीके से पक रही है, एक मुल्क में एक तरीके से पक रहा है, और दूसरी कंट्री में दूसरी तरीके से पक रहा है। एक आदमी इस चीज के अंदर एक जायका, एक टेस्ट पैदा कर रहा है, और दूसरा आदमी दूसरा जायका पैदा कर रहा है। वो कौन सी जात है जो इंसानों के दिमागों में खाना पकाने की मुख्तलिफ तरकीबें डाल रहा है, किस तरह पकाऊंगे तो लज्जत ज्यादा होगी? खाना खाते वक्त अगर ये बातें सोचा करे तो उस खाने के अंदर भी अल्लाह जल्ल शानू का जलवा नजर आएगा। खाना खाते वक्त इस बात को सोचा करे तो अल्लाह जल्ल शानू का जलवा नजर आएगा, और उसके नतीजे में अल्लाह ताला की मोहब्बत में इजाफा होगा। जी, ये कहां से है? इसलिए तो आज हमारी नजर उसके आगे नहीं जाती। एक बावर्ची ने खाना पकाया तो तारीफ शुरू कर दी, लेकिन बताओ हमने कितने फल खाए? क्या मैंगो खाया, क्या ऑरेंज खाया? उस पर किस कौन सा बावर्ची था? वो तो अल्लाह बराह रास्त कर रहा है, तो कभी उस पर नहीं सोचा कि इसका ऊपर का कलर देखो, अंदर की पैकिंग देखो, अंदर के रस की हिफाजत देखो, कि खट्टा है, कोई मीठा है, कोई क्या है, कोई खट मीठा है, ये सारा कौन है, ये सब किसने पकाया? ये तो अल्लाह ने पकाया। एक गिलास में पानी है, अरे गिलास का पानी कहां से आया? जब पानी पियो तो ये गौर करो कि पानी का भरा गिलास मेरे पास कहां से आया? किस तरह अल्लाह तबारक ताला ने समंदर से मानसून उठाया, यानी एक हवा उठती है जो गर्मी की शिद्दत में समंदर का पानी भाप बन के ऊपर जाता है, उसको मानसून कहते हैं। समंदर से मानसून उठाया, जब तक ये समंदर में था उस वक्त तक वो पानी खारा और कड़वा था, कोई पी नहीं सकता, पीना चाहते तो पी नहीं सकते थे। और समंदर के पानी को खारा रखने में, समंदर का पानी जो नमकीन है उस खारा रखने में हिकमत है कि बेशुमार जानवर समंदर के अंदर मर रहे हैं। अगर समंदर के पानी में ये नमकियात और ये नमक न होता तो उस पानी में बदबू पैदा हो जाती। इसलिए अल्लाह ताला समंदर के पानी को खारा रखा, लेकिन तुम्हें पिलाने के लिए अल्लाह ताला ने समंदर से मानसून बादल उठाए। पीने के लिए अल्लाह ने उसमें से गर्मी से वो भाप बनकर ऊपर गया, और उस मानसून बादलों में ऐसी खुदकार मशीन लगी हुई है। अब वो बादल में जो बादल की शक्ल बना, फिर उसके अंदर अल्लाह ने ऑटोमेटिक ऐसा फिल्टर लगा हुआ है कि पानी की सारी नमकियात और कड़वाहट समंदर के अंदर रह गई और वो पानी मीठा बन गया। बाप बना तो समंदर का पानी था, लेकिन अल्लाह ने उसमें से नमक को नहीं लिया, साफ लिया, ऊपर जाकर फिल्टर किया, फिर बारिश के रास्ते से नीचे बरसाया और फिर हमारे तक वो पानी पहुंचा। आज जाओ, ये हमारी पानी आता है कहां से? आता है यहां पर, बड़े बड़े उन्होंने वो तालाब बना रखे हैं, डैम बना रखे हैं, उसमें बारिश का पहाड़ों से पानी जमा होता है, फिर उसी को पाइपलाइन के जरिए से पूरी सिटी के अंदर सप्लाई करते हैं। तो क्या हुआ, वही समंदर का पानी ऊपर गया, ऊपर से नीचे उतारा, इन्होंने जमा किया और फिर घर घर तक पहुंचाया। क्या अल्लाह का निजाम है। अल्लाह, फिर अगर अल्लाह ताला हमसे ये कह देते कि देखो हम समंदर से बादल उठा रहे हैं और तुम्हारे लिए बारिश बरसा रहे हैं, लिहाजा तुम 6 महीने के लिए पानी का जखीरा करके रख लो, स्टॉक कर लो। अगर अल्लाह हमें कह देते कि देखो तुम 6 महीने का स्टॉक कर लो, 6 महीने के बाद दोबारा हम बरसाएंगे और तुम खुद उस पानी की हिफाजत करो, क्या इंसान के बस में बात थी कि 6 महीने का पानी स्टॉक करके रख लेता? नहीं, क्योंकि बात इंसान के बस में नहीं थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पानी को खुद ही महफूज कर दिया। खुद ही थोड़े थोड़े वक्फे से पानी को बरसाते हैं और हमारे वो डैम को भर देते हैं और वहां से हमें पानी मिलता रहता है। फअस्कन्नाहु फिल अर्द, यानी ये पानी बादल की कार्गो सर्विस के जरिए, बादल की कार्गो सर्विस के जरिए समंदर से उठकर पहाड़ों तक जा रहा है, पहाड़ों पर पानी बरसता है, तो वहां पर खुदकार फ्रीजर है, अल्लाह का बनाए हुए फ्रीजर है, अल्लाह ताला ने कायम कर दिए है, चुनांचे पानी बर्फ की शक्ल में पहाड़ों पर जमा है। तुम्हें तकलीफ नहीं दी कि तुम खुद उस अपने पास जखीरा करके रख लो, बल्कि अल्लाह ने खुद स्टॉक कर दिया और जरूरत के मुताबिक अल्लाह बरसाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या अल्लाह है, क्या अल्लाह है, अल्लाह हमें माफ कर दे। तो कितना बड़ा हमारा कैसा इंतजाम कर रहा है। इसके बाद फिर अगर तुमसे कहते कि हमने पहाड़ों पर तुम्हारे लिए पानी का स्टॉक कर दिया है, अरे तुम वहां से जाकर उठा लाओ, ये भी तो कह सकते थे। तुम में से किसी के बस में नहीं था कि पहाड़ों से पानी लाकर इस्तेमाल करता, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरज की गर्मी से उसको पिघलाया, फिर दरिया की शक्ल बनाया, दरियाओं के जरिए उस पानी को सारी मखलूक तक पहुंचाया, फिर जमीन के अंदर को अंदर रगों में पानी चलाया, जमीन के अंदर रगों में, जमीन के अंदर भी जो पानी चलता है ना रगों में, उसको पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रगों में पानी चलाया ताकि तुम जहां कहीं जमीन को खोदो वहीं से तुम्हारे लिए पानी निकल आए, यानी बोरहोल जो खोदते हैं तो उसमें से पानी जो निकलता है, तो जमीन की रगों में जो पानी चलता है ना वो फिर वहां से निकलता है। तो वहां पर हमने चलाया कि कहां जहां कहीं भी तुम जमीन को खोदो वहीं से तुम्हारे लिए पानी निकल आए, इतने वास्तों से तुम्हारे पास ये पानी का एक गिलास आया है। पानी का एक गिलास कितने वास्तों से है, तुमने गटागट गट करके एकदम से पी लिया और अपने प्यास बुझा ली और कभी तुमने सोचा तक नहीं कि पानी कहां से आया था, कभी सोचा भी नहीं कि पानी कहां से आया था। या अल्लाह, अरे ये रंग रंग फूल कहां से आए? अगर तुम गौर करोगे तुम्हें अल्लाह जल्ल शानू का जलवा उस पानी में भी नजर आएगा, इस खाने में भी नजर आएगा, बल्कि यानी ये अल्लाह का जलवा हर चीज में नजर आता है। मैंने कहा ना अल्लाह नजर आता है, क्या मतलब अल्लाह नजर नहीं आता है, ये गौर करेंगे तो इंसान की सोच अल्लाह तक पहुंचती है। तो फिर अल्लाह नजर नहीं आया, अल्लाह का जलवा नजर नहीं आया। जलवा कहते हैं अल्लाह खुद नहीं, अल्लाह अपनी ताकत किसी चीज में दिखाते हैं, उसको कहते हैं जलवा। अपनी ताकत जैसे पानी के हम तक पहुंचाया है, तो अल्लाह ने अपनी ताकत दिखाई है कि कहां कहां से गुजार कर तुम्हारे लिए मैंने पानी फिल्टर करके इसमें जेम्स वगैरह मार करके मैंने तुम तक पहुंचाया है। ये अल्लाह का जलवा है, नजर नहीं आ रहा है, अल्लाह की कुदरत नजर आ रही है। खाने में देखा, अब फलों में फूलों में देखो। अल्लाह, मसलन तुम बाग में गए, वहां तुम्हें खूबसूरत और खुशनुमा फूल अच्छा लगा, वो फूल दिल को भा रहा है, आंखों को अच्छा लग रहा है, बस उसी हद पर आकर रुक गए। अरे आगे भी गौर करो, हम बाग में जाते हैं ना, अरे वाह क्या बेहतरीन फूल है, उसको जरा सूंघते हैं, तोड़ते हैं, बस यहां आकर खत्म। अरे आगे भी तो जरा गौर करो और ये देखो ये फूल कहां से आया, किस जात ने इस फूल के अंदर ये हुस्न पैदा किया, किस जात ने इसके अंदर जमाल पैदा किया। और ये गौर करो कि ये खाद एक ही है, यानी इस फूल को जब नीचे इसका बीज डाला था तो उसमें फर्टिलाइजर एक ही है, पानी एक ही है, उस पानी में कोई कलर वाला पानी नहीं डाला था, पानी एक ही है, सादा खाद एक ही है और बीज एक तरह के हैं, लेकिन जब उन बीजों को जमीन के अंदर डालो तो एक बीज से एक तरह का फूल निकल रहा है, दूसरे बीज से दूसरी तरह का फूल निकल रहा है। इस तरह सारी कायनात में अल्लाह ताला ने अनवाओ अकसाम के फूल फैला दिए। कौन जात है जो ये फूल बूटे पैदा कर रहा है? और फिर उसमें गौर करो कि वो खुद कितना खूबसूरत होगा, वो खुद जिसने इस फूलों के अंदर खूबसूरती भरी है, वो खुद कितना खूबसूरत होगा जिसने सारी खूबसूरतियां पैदा फरमाई है। बहरहाल जो चीज भी इस कायनात में है वो उसी जात ने पैदा की है, जो चीज भी इस कायनात में है वो उसी जात ने पैदा की है, उसी ने उसके अंदर हुस्न जमाल डाला, उसी ने उसको खुशनुमा बनाया, और ये सब कुछ उसकी अता है, सब कुछ उसकी अता है। हमारे वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी बात को एक मिसाल के जरिए समझाया करते थे। एक देहाती था, उसने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी थी और ट्रेन नहीं देखी थी। जब पहली मरतबा उसने रेलगाड़ी देखी तो उसका बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतने बड़े जिस्म को कौन हरकत दे रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी तो बहुत बड़ी है ना, कि इतने बड़े जिस्म को कौन हरकत दे रहा है, कौन चला रहा है। जो उसको हरकत दे रहा है उसके अंदर बड़ी ताकत है। चुनाचे वो स्टेशन पहुंचा और वहां रेलगाड़ी खड़ी हुई थी। उसने देखा कि रेल का गार्ड हाथ में सब्ज झंडी लेकर यानी ग्रीन सिग्नल लेकर खड़ा है। जब उसने झंडी को हिलाया ग्रीन सिग्नल, तो रेल चलनी शुरू हो गई। देहाती समझा कि इतनी बड़ी रेल को चलाने वाली क्या है, ये ग्रीन सिग्नल है, सब्ज झंडी है। वो झंडा यूं हिलाते हैं ना, वो कपड़ा होता है ग्रीन, उसको यूं हिलाते हैं तो वो चलती है। तो क्या फरमाया कि असल में इतनी बड़ी रेल को चलाने वाली क्या चीज है, इस सब्ज झंडी है, क्योंकि उसको यूं हिलाया तो वो चलना शुरू कर दी, उसमें बड़ी ताकत है, फ्लग ग्रीन, इसमें बड़ी ताकत है, और पूजा शुरू कर दी। बस तो उसने उसी झंडी की पूजा शुरू कर दी। क्या बोले, यही बड़ी ताकत है कि तेरे अंदर बड़ी ताकत है, तूने इतनी बड़ी रेल को चला दिया। दंडुत हिंदू के यहां इबादत का एक तरीका है, दंडुत हिंदू एक किस्म हिंदू की, कि उनके अंदर जो इबादत का एक तरीका है कि जिसकी इबादत करते हैं उसके पास जाकर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और उसके आगे बार बार सर झुकाते हैं, उसके सामने झुकते हैं। किसी ने उससे कहा कि ये तू क्या हरकत कर रहा है, एक झंडी को दंडुत करना शुरू कर दे। दंडुत कहते हैं झुकने को, इबादत का एक तरीका होता है, इसका नाम है दंडुत, समझे, इबादत का एक तरीका। और दंडुत वो क्या है कि उसमें हाथ जोड़ना और बार बार सर झुकाना, उसको कहते हैं दंडुत। तो अब वो बेचारा झंडी के सामने वो अपनी इसी इबादत करने लगा, तो किसी ने कहा कि तू ये क्या हरकत कर रहा है। एक झंडी की तो इबादत करना शुरू कर दी। उस देहाती ने जवाब दिया कि झंडी बड़ी ताकतवर है, इतनी बड़ी रेलगाड़ी को चला देती है, इसलिए मैं इसको दंडुत कर रहा हूं, यानी इसकी इबादत कर रहा हूं। किसी ने उससे कहा कि झंडी तो कुछ भी नहीं। किसी ने कहा कि भाई इसमें कोई ताकत नहीं, ये तो महज एक अलामत है, दरअसल गाड़ी को चलाने वाला तो ड्राइवर है, जो गाड़ी के अंदर बैठकर उसको चला रहा है, वहां इंजन के अंदर जाकर उसको देख ले। चुनाची इंजन के पास गया और अंदर गया तो वाकईतन एक ड्राइवर बैठा था। उस देहाती ने उससे पूछा कि गाड़ी तुम चलाते हो? ड्राइवर ने कहा हाँ मैं चलाता हूं। तो देहाती ने कहा कि तुम इतनी बड़ी रेल को चलाते हो, तो दर हकीकत तुम दंडुत के लायक हो, यानी तुम इबादत के लायक हो। चुनाचे उस देहाती ने उस ड्राइवर के आगे इबादत झुकना शुरू कर दिया, पैर जोड़कर हाथ जोड़कर शुरू कर दिया। उस ड्राइवर ने कहा भाई मैं तो तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इतनी बड़ी रेल को चला सकूं, बल्कि इंजन में जो भाप नजर आ रही है उसके अंदर ताकत है, और ये भाप जो है वो रेलगाड़ी को, स्टीम जो रेलगाड़ी को चलाती है उसके अंदर ताकत है। तो उस देहाती ने जाकर भाप की इबादत शुरू कर दी, और यहां तक पहुंचकर सारी दास्तान खत्म हो गई। अब झंडी से चला था, भाप तक आकर रुका जी। अब भाप को पैदा करने वाला कौन? तो हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भाप तक तो पहुंचकर सारी दास्तान इसलिए खत्म हो गई कि वो झंडी भी आंख से नजर आ रही थी, वो ड्राइवर भी आंख से नजर आ रहा था, और वो भाप भी आंख से नजर आ रही थी। इस वजह से उन्हीं चीजों को सब कुछ समझकर उनकी परस्तिश इबादत शुरू कर दी। लेकिन उस देहाती ने ये नहीं सोचा कि इस भाप में ताकत कहां से आई, इस भाप में ताकत कहां से आ गई जो इतनी बड़ी रेल को चला रही है। उसकी अकल भाप से आगे न बढ़ी। उसका नतीजा ये हुआ कि उसने जाहिरी असबाब को अपना सब कुछ समझकर उसी को अपना माई बाप समझ लिया। अगर हकीकत देखने वाली निगाह होती, अगर हकीकत देखने वाली नजर होती, तो वो एक कदम और आगे बढ़ता और ये सोचता कि इस भाप को पैदा करने वाला कौन है। फिर उसको अल्लाह जल्ल शानू का जलवा नजर आता। बहरहाल कायनात की किसी चीज को भी जब हकीकत बीन निगाहों से देखोगे, हकीकत वाली नजरों से देखोगे, तो उसमें अल्लाह जल्ल शानू का जलवा जरूर नजर आएगा। बस देखने वाली आंख चाहिए और सोचने वाला दिल चाहिए। देखो अल्लाह तक पहुंचने का, देखो वो सोच का बताया था ना, अल्लाह तक पहुंचने के लिए पांच असबाब है, कसरत जिक्रुल्लाह और गौरव फिकर, कसरत गौरव फिकर। तो गौरव फिकर को उस वक्त भी समझा, अभी एक अलग अंदाज से समझा रहे हैं कि एक एक चीज से, खाने से अल्लाह तक कैसे पहुंचे, और इस तरीके से पानी से अल्लाह तक पहुंचना, अब फल और फूल को देखा अल्लाह तक पहुंचो, अब बिल्डिंग को देखो अल्लाह तक पहुंचो, इमारत में अल्लाह का जलवा। मसलन तुमने एक बहुत शानदार बनी हुई इमारत देखी, बिल्डिंग देखी, अब तुम उसकी बहुत तारीफ कर रहे हो कि बहुत शानदार, बहुत आला, बहुत खूबसूरत, क्या डिजाइन बनाई, और क्या इसका मैमार है, ये मैमार यानी वो बनाने वाला। लेकिन ये सोचा कि इमारत कैसे वजूद में आई, लेकिन ये सोचा कि कैसे बनी। अगर ये सिलसिला आगे चलाओगे तो इब्तिदा देखने में नजर आएगा कि मैमार ने बनाई है, फिर सोचो कि मैमार ऐसी शानदार इमारत कैसे बना सकता है। जरूर किसी आर्किटेक्ट ने इस इमारत का नक्शा बनाया होगा। अब ज्यादा ज्यादा आर्किटेक्ट पर निगाह रुक जाएगी, लेकिन आगे कदम बढ़ाओ और ये सोचो कि इस आर्किटेक्ट के दिल में ख्याल और तजवीज किसने डाली। जब ये सोचोगे तो तुम्हें इस इमारत में अल्लाह जल्ल शानों का जलवाकार फरमा नजर आएगा। ये बिल्डिंगों के डिजाइन जो आर्किटेक्ट बनाता है, हकीकत में इसके दिल में डालने वाला कौन है? वो अल्लाह है, वो सबसे बड़ा आर्किटेक्ट जिसने पूरी दुनिया का निजाम बनाया है। कितना खूबसूरत बनाया कि उसमें कोई ऐब नहीं निकाल सकता। अल्लाह ताला ने जो प्लानिंग और डिजाइन और आर्किटेक्ट जो बनाया है पूरी दुनिया के निजाम का, उसमें दुनिया की कोई ताकत एक ऐब नहीं निकाल, अगर एक दरख्त को दुनिया की सारी साइंसदान मिलकर उसमें से ऐब नहीं निकाल सकती कि इसमें ये गलती, एक दरख्त एक जानवर को ले ले उसमें से ऐब नहीं निकाल सकती, एक इंसान को ले ले कि नहीं, आज की साइंस ने गौर फिक्र किया कि इस इंसान के बनाने में एक थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको ऐसा होना चाहिए, नहीं कोई नहीं निकाल सकता। तो सबसे बड़ा तो अल्लाह ताला है, कैसा अल्लाह ताला डिजाइनिंग बना रहा है, जमीनों की डिजाइन बनाई, समंदरों की डिजाइन बनाई, और बादलों का सारा सिस्टम बनाया, और उसमें से बारिश का, सूरज का, सितारों का सारा सिस्टम, ये कौन बना, इसका आर्किटेक्ट कौन है? अल्लाह। और वो ऐसी जबरदस्त बनाया है कि सारी दुनिया के साइंसदान मिल जाए, आर्किटेक्ट मिल जाए, और वो अल्लाह की कुदरत से बनी हुई चीज में कभी भी वो कोई ऐब नहीं निकाल सकते कि ये पहाड़ यहां का नहीं होना चाहता था, ये पहाड़ यहां होना चाहता था, आज दुनिया की ताकत नहीं बता सकते, बल्कि हर एक साइंसदान को बोले पहाड़ को यहां इसलिए बनाया है कि यहां इसकी जरूरत ही थी, वो भी जानते हैं कि अल्लाह ने बनाया है, बस अल्लाह को मानते नहीं कि हमारा फिर क्या होगा। जी, साली को हर कदम पर अल्लाह का जलवा, एक शायर गुजरे हैं, बहजाद लखनवी मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। बड़ी अच्छी नातें कहा करते थे, उनकी गजल का एक शेर है, वो कहाँ का राह रो है उसे क्या मिलेगी मंजिल, वो कहाँ का राह रो है उसे क्या मिलेगी मंजिल, जिसे हर कदम पर हर सू तू ही तू नजर आए, जिसे हर कदम पर हर सू तू ही तू नजर आए, वो कहाँ का राह रो है उसे क्या मिलेगी मंजिल, जिसे हर कदम पर हर सू तू ही तू नजर आए, यानी जिस मुसाफिर को हर कदम पर हर सू यानी हर वक्त ये अल्लाह तेरा जलवा नजर ना आए, वो कैसा मुसाफिर है, हर कदम पर और हर तरफ जो मुसाफिर जो चल रहा है, तो वो कैसा मुसाफिर जिसको हर कदम पर और हर तरफ अल्लाह का जलवा नजर ना है, क्यों कि जो चीज देखेगा उसमें अल्लाह का जलवा होगा, एक मुसाफिर चलेगा तो जमीन देखेगा तो जमीन में अल्लाह का जलवा, दरख्त देखेगा अल्लाह का जलवा, हवा देखेगा अल्लाह का जलवा, परिंदे देखेगा, फूल देखेगा, सब्जियां देखेगा, फल देखेगा, अल्लाह का जलवा नजर आएगा। वो कैसा राहरव है, वो कैसा सालिक है, हकीकत में तो सालिक वो है कि जिसे हर कदम पर हर सू अल्लाह ताला का जलवा नजर आए, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह हर चीज में अल्लाह नजर आए। मोबाइल तो हमारे हाथ में है, सब इस मोबाइल से बातें सुन रहे हैं, लेकिन इस मोबाइल से अल्लाह तक पहुंचो, अल्लाह का जलवा इसमें देखो कि देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसके अंदर की वायरिंग और कैसा अल्लाह ने कितना बारीक बनाया है, क्या दिमाग अल्लाह ताला ने दिया, और हम तो वो साइंस और वो टेक्नोलॉजी जिन्होंने मोबाइल बनाया उसकी तो तारीफ कर रहे हैं, अरे यहां से अल्लाह का जलवा नजर करो, अल्लाह को देखो अल्लाह ने कैसा बनाया है, और एक खाली यूं हाथ लगाते हैं क्या चीजें आ जाती है, अरे दुनिया की हर चीज देखना हो तो खाली यूं लिख दो सब आ जाता, क्या अल्लाह की कुदरत है, क्या अल्लाह की अल्लाह ने जन्नत का एक नमूना इस मोबाइल के अंदर दे दिया है कि सारा ऑटोमेटिक हो रहा है, पहले तो हाथ से मेहनत करनी पड़ती, अभी तो खाली टच स्क्रीन टच बन गया सब, फिर वहां पर जन्नत का क्या होगा, वहां स्क्रीन टच नहीं, वहां इरादा टच, इससे आगे की टेक्नोलॉजी है जन्नत के अंदर, इरादा टच, इरादा किया वो हो गया, इरादा खत्म वो लॉक हो गया बंद, वो चीज हट गई, इरादा टच, तो अभी क्या है स्क्रीन टच है, तो उन्होंने अभी इसको खाली देखो तो अल्लाह तक पहुंच सकता है, अल्लाह का जलवा नजर आ सकता है, अल्लाह की कुदरत इसी मोबाइल के अंदर देख लो, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया, रोज इस्तेमाल करते हैं, दूसरी क्योंकि जितनी चीजें हैं उसको कम देखते हैं, सबसे ज्यादा हम मोबाइल को देखते हैं, तो इसी से हमें अल्लाह भी याद आएगा हर वक्त। तू मुझको भरी बज्म में तन्हा नजर आया, जब ये सोच बहुत आगे बढ़ जाती है ना, तो फिर ये नजर आने लगता है कि इस पूरी कायनात में हकीकी और असल वजूद तो सिर्फ अल्लाह जल्ल शानहू का है। जब ये सोच आगे बढ़ती है तो ये नजर आता है कि पूरी कायनात में हकीकी और असल वजूद तो अल्लाह जल्ल शानहू है, बाकी सब वजूद तो उसके पैदा किए हुए हैं, उसके ताबे है, उस पर मौकूफ है, उसी को वहदतुल वजूद कहते हैं। एक अकीदा है वहदतुल वजूद, वहदतुल वजूद कह देते हैं। आप हजरात ने वहदतुल वजूद का लफ्ज सुना होगा, उसकी गलत तफसीरें भी की गई है और उसकी वजह से लोग गुमराहियों में भी मुब्तला हुए, लेकिन वहदतुल वजूद के सही माना यह है कि कायनात में वजूद हकीकी अल्लाह जल्ल शानहू के अलावा किसी का नहीं है। यह है वहदतुल वजूद, यानी इस कायनात में वजूद दे हकीकी जो कभी खत्म नहीं होने वाली वो अल्लाह की जात है। वहदतुल वजूद उसका वजूद है हकीकी, अल्लाह जल्ल शानहू का किसी का नहीं है, सारे वजूद उसके वजूद के सामने मांद और कल अदम है, सारा वजूद अल्लाह के वजूद से है, समझ में आया। वो वहदतुल वजूद है और उसकी उसके वजूद है, वो अल्लाह है तो जबी सब कुछ है, आसमान का निजाम है, बारिश का निजाम है, इंसानों का निजाम है, उसके वजूद पर वजूद में है, समझे समझे भाई, उसके वजूद से वजूद में है, सारे वजूद उसके वजूद के सामने मांद। अब जाहिर बात है उसी के वजूद से है, तो दुनिया का सारा जो वजूद है वो अल्लाह के वजूद के सामने कुछ भी नहीं, वो तो अल्लाह ने बनाया, खुद बना नहीं है, मांद और कल अदम है। हमारे हजरत मजजूम रहमतुल्लाह अलैह ने वहदतुल वजूद का सारा फलसफा एक शेर में बयान फरमा दिया, मजजूम रहमतुल्लाह, जब महर नुमाया हुआ सब छुप गए तारे, जब महर नुमाया हुआ सब छुप गए तारे, तू मुझको भरी बज्म में तन्हा नजर आया, तू मुझको भरी बज्म में तन्हा नजर आया, आसमान पर सारी रात तारों की महफिल जमी रहती है, आसमान पर सारी रात तारे स्टार की महफिल यानी बहुत सारे होते हैं जमी रहती है, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में तारे चमक रहे हैं, सितारा अपना हुस्न और जलवा दिखा रहा है, पूरे आसमान को घेरा हुआ है और उस पर अपनी बज्म सजाई हुई है, लेकिन जब सुबह को सूरज नमूदार हुआ ना, महर नुमाया हुआ यानी सूरज जब नमूदार हुआ तो अभी नमूदार भी नहीं हुआ था बल्कि अभी उफुक के नीचे ही था, यानी सुबह सादिक हुई थी और उसके नीचे से ही उसने सुबह का उजाला फैलाया तो बस सारे सितारे मांद पड़ गए। सूरज आया तो सारे सितारे कहां गए, थे तो सही लेकिन इसके वजूद से उसका वजूद कल अदम हो गया। सूरज आया तो बस सारे सितारे मांद पड़ गए, क्या वो सितारे कहीं चले जाते हैं, अरे नहीं मौजूद ही रहते हैं, लेकिन जब सूरज की रोशनी आई तो उसने सारे सितारों को मांद कर दिया। इसी तरीके से जब हम अल्लाह तक पहुंचेंगे तो जब अल्लाह का जलवा नजर आएगा तो सारी चीज जो है वो मांद पड़ जाएगी, बोले कुछ भी नहीं है, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। अरे समझे इस बात को, मतलब समझाना था ये है कि हम चीज को देखकर अब सारी बजमत फैली हुई, यानी सारी दुनिया की सारी चीजें एक निजाम है ना पूरा दुनिया का, लेकिन जब अल्लाह का जलवा नजर आएगा तो सारी दुनिया का जो जो जलवा नजर आ रहा है, सारी दुनिया का जो निजाम नजर आ रहा है वो मांद पड़ जाएगा, अरे इसमें कोई कमाल नहीं, ये तो मेरा अल्लाह का कमाल है, उसी की वजह से इसका असर हो रहा है। उसी बात को गालिब शायर गुजरा, मरहूम ने एक शेर में इस तरह बयान फरमाया, हर सितारा रात को महफिल में महवे लाप था, हर सितारा रात को महफिल में महवे लाप था, सुबह दम खुर्शीद जब निकला, सुबह दमे खुर्शीद जब निकला तो मतला साफ था, तो मतला आसमान साफ था। सितारा, हर सितारा रात को महफिल में महवे लाप था, चमक रहा था अपनी अपनी जगह, लेकिन जब कौन निकला, खुर्शीद आया यानी सूरज आया, तो सारा आसमान साफ हो गया। यानी रात के वक्त हर सितारा बड़ी डेंगे मार रहा था कि मेरी रोशनी इतनी तेज, वो कहता है मेरी रोशनी इतनी तेज, लेकिन जब सुबह को जब सूरज निकला तो मतलब साफ था, सारे डेंगे मारने वाले सितारे मिट गए, और मिट गए, किसी का निशान बाकी नहीं रहा, बस एक ही सूरज था जो नजर आ रहा था। इसी तरह जब अल्लाह ताला के जलवे का सूरज, अल्लाह ताला के जलवे का सूरज निकलता है तो सारे वजूदों के सितारे मांद पड़ जाते हैं। अभी देखो, एक तरफ तो साइंस का स्टार है, सितारा है, और एक तरफ तो टेक्नोलॉजी का सितारा है, एक तरफ तो इंजीनियरिंग का सितारा है, और पता नहीं क्या क्या सारे एक सितारे हैं, लेकिन जब अल्लाह का जलवा जब नजर आएगा तो हम कहेंगे भाई इसमें कुछ नहीं है, ये सब अल्लाह दिखा रहा है। या ये जो हमने बताया ना, सारे सितारे बताए थे, वो खाना और वो पानी, गिलास आया और फल और फ्रूट, ये सब के सब जो थे, ये अल्लाह ताला का जलवा इसके अंदर है। हर हर चीज अल्लाह ताला की ताबे है, हर चीज। बहरहाल आदमी जरा ये सोचिए, सोचने की आदत डाले कि जो कुछ मैं देख रहा हूं उसके पीछे किसी और का जलवा नजर आ रहा है। जो कुछ मैं देख रहा हूं उसके पीछे किसी और का जलवा नजर आ रहा है, और वो अल्लाह जल्ल शानहु का जलवा है। जैसे बताया ना, हम जो देख रहे हैं मोबाइल है कि नहीं, लेकिन इसके पीछे अल्लाह ताला का जलवा नजर है आ रहा है। हम देख रहे हैं बिल्डिंग, उसके पीछे अल्लाह का जलवा नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं समंदर, उसके पीछे अल्लाह का जलवा नजर आ रहा है। तो फरमाए देखो, उसके पीछे किसी का जलवा नजर, अल्लाह जल शानु का जलवा है। चाहे कोई इमारत देखे, कोई पहाड़ देखे, समंदर देखे, दरिया देखे, इंसान की बनाई हुई चीजें देखे, मसलन गाड़ियां देखे, हर चीज के पीछे अल्लाह जल शानु का जलवा कार फरमा नजर आएगा। देखिए, आज लोग, बहुत से लोग जो है दुनिया में, कुछ लोग ऐसे है जो अल्लाह ही का इनकार कर दिया, बोले सारी दुनिया खुद ब खुद चल रही है, अल्लाह का नऊज बिल्ला, अल्लाह का वजूद ही नहीं है, वो तो एक ऐसे ही गढ़ लिया है कि एक अल्लाह है जिसने पैदा किया है। बोले नहीं 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 कुछ नहीं, ये असल में इस बात से इस उसकी तरफ इशारा है कि नहीं, हर चीज में अल्लाह का जलवा है, ये दिखाना चाह रहे। आपने सुना होगा ना कि जो कहते हैं कि नहीं भाई कोई वजूद नहीं अल्लाह का, नऊज बिल्ला, हाँ, बल्कि तो दुनिया खुद ब खुद चल रही है, और इसलिए कि भाई वो नजर नहीं आता है, जो चीज नजर नहीं आती है तो उसको मानना भी नहीं चाहिए, और जो चीज नजर आती है उसी को मानो बस। तो हकीकत में जैसे मोबाइल नजर आती है तो उसको मानते हैं, अरे इसको नहीं, इसके पीछे अल्लाह का जलवा है, ये इस्लाम सिखाता है। इस्लाम ये है कि हर चीज के पीछे अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें गौर करोगे तो। उन्होंने गौर नहीं किया तो अल्लाह ही का इनकार कर दिया जी। तो फरोज के पीछे किसी और का जलवा नजर आ रहा है, तो उसके उसके पर हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो अक्सरों ने सुना होगा, मरहूम अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। ये तबलीग की बहुत बड़ी जबान थी, अल्लाह ताला ने उसे बहुत बड़ा काम लिया। उनकी एक डहरिये से मुलाकात हो गई, यानी जो कहता था खुदा ने, बोले हम अब वो अपनी कारगुजारी सुना रहे, कम्युनिस्ट जो अल्लाह को नहीं मानते, कि हम एक सफर में हवाई जहाज में थे, वो अपनी कारगुजारी सुना रहे। अच्छा लो, टाइम हो गया, बहुत मजेदार है ये। तो उसके जरिए से एक तो हमारा ईमान बनेगा, और ऐसे लोग जो अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहे हैं, तो कहीं ऐसी बातों में आकर हम ऐसा न बन जाए, तो हमारा ईमान पक्का होना चाहिए। तो देखो एक वो बात, इंशाल्लाह इस कारगुजारी को कल बताएंगे। चलो 5 मिनट है, थोड़ा सा कर लेते हैं। कि हम एक सफर में हवाई जहाज में थे, एक देहरिया, उसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट, एक देहरिया हमारे पास बैठा हुआ था। हवाई जहाज में सफर कर रहे थे और उसमें सीट पर कोई ना कोई होता है। इससे हमने थोड़ी सी बात की, वो जरा मानुस हुआ। वो मुशरिक और वेद वगैरह को भी नहीं मानता था, शिर्क को भी नहीं मानता था, वेद ये जो हिंदू मजहब के कुछ वो है उसको भी नहीं मानता था। उसका रुख देहरियत की तरफ था। उसने कहा कि मौलवी साहब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। उसने कहा कि दुनिया के करोड़ हा करोड़ आदमी अल्लाह ताला को मानते हैं, मुसलमान भी और हिंदू भी और क्रिश्चियन भी, यहूदो नसारा भी, ये सब मानते हैं ना। अब चाहे सबकी शक्ल अलग अलग हो लेकिन मानते हैं। और मुझे हैरत होती है कि इनमें से किसी ने भी अल्लाह को देखा तो नहीं। तो उस कहने लगा कि मुझे हैरत होती है कि सभी अल्लाह को मानते हैं तो, लेकिन किसी ने भी अल्लाह को देखा तो नहीं, फिर ये अल्लाह का वजूद, फिर ये अल्लाह को जो दिखाई नहीं देता कैसे मानते हैं। बस उसने कहा, मौलवी साहब माफ करना, मैंने बहुत से जोगियों से पूछा, जोगी यानी हिंदुओं के जो बड़े होते हैं यानी इल्म वाले, कुछ जोगियों से पूछा लेकिन वो मेरे को इत्मीनान नहीं दिला सके। क्यों? कि मेरे माँ बाप भी इसी लाइन के थे। वो कहने लगा मेरे माँ बाप भी यानी किसी मजहब में थे। चूंकि आपकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि शायद तुम मुझको समझा सकोगे कि जो अल्लाह हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे कैसे माने। अब यह उसका सवाल है, सवाल अच्छी तरीके समझ लो। देखो हवाई जहाज में बैठे हैं लेकिन वो बैठे बैठे भी दावत का काम हो रहा है। देखो वो वक्त भी बेकार नहीं, और वो भी कैसा काम हो रहा है वो देखो। ये कैसा आदमी जो खुदा का मुनकिर है और उसके बात करके आखिर में उसको खुदा को मानने वाला बना देते। जी खुदा को मानने वाला बना देते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाथ उठा ले दुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.